انفروا خفافا وثقالا، निकलो चाहे हल्के हो चाहे बोझल हो। यानी अब यहां से पता चलता है कि ये सबके लिए फर्ज था, सबको जाना है चाहे हल्के हैं या बोझल है। क्या मतलब हल्के हैं या बोझल है? हल्का इंसान कब होता है? जब देखें, जब उसकी कोई पसंद की चीज है, जब उसको कोई शौक की चीज है, तो वो हल्का होता है। हल्का मतलब हल्का फुल्का खुद को महसूस करता है ना। और अगर शौक ना हो तो कदम भी बोझल हो जाते हैं, कदम भी उठाना मुश्किल हो जाता है इंसान को, वो काम बड़ा ही सख्त महसूस होता है। इसी तरह अगर खुशी का मौका है तो इंसान हल्का महसूस करता है, अगर परेशानी का मौका है, मसले मसाइल है उसके अंदर, तो इंसान खुद को बोझल महसूस करता है। इसी तरह अगर हालात तंग हैं तो फिर इंसान बोझल महसूस करता है, हालात खुले हैं तो फिर हल्का महसूस करता है। तो चाहे आप के पास आसानी है, चाहे सख्ती है, चाहे आप भारी हैं, हल्के हैं, तंग हो रहा है दिल या खुशी है दिल के अंदर, चाहे आप फारिग हैं, चाहे आप बहुत बिजी हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप मोहताज हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, सबको कहा गया ये कह के खिफाफ और वसीकाल, सबको निकलना जिस हालत में भी है, यानी एक्सेप्ट कि जिसके पास कोई जेन्युइन एक्सक्यूज है, सब निकलेंगे। अब ये बिल्कुल साफ ऑर्डर था। लेकिन ये उकम साहबा पे सख्त गुजरा था ना कि जो जईफ है, यहाँ पे जईफों की बात नहीं आई ना, यहाँ पे बीमारों की भी नहीं बात आई, यहाँ पे वो जिसके पास सुपारी नहीं, कुछ भी नहीं है जिसको लेके चल सके, कोई खर्च नहीं है रास्ते का, कुछ भी नहीं है, बहुत ही मोहताज है, तो फिर उसका क्या होगा? तो फिर उसके लिए फिर आयत आई थी लैसा अल दुआफा, तो फिर हम वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो है ना फिर उनके लिए रुख्सत हो गई थी। तो वजाहिदु भी अम्वालिकुम व अंफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और जिहाद करो अपने मालों के साथ और जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में। माल भी लगाओ और अपनी जान भी लगाओ। यानी ये नहीं कि हजरत उस्मान इतना माल दे के और उसके बाद फिर खुद कहे अब तो मैं घर बैठ जाता हूँ, अब मैंने इतने पैसे दे तो दिए, नहीं, फिर खुद चल भी पड़े। और इसी तरह जाने भी लगाने वाला जो कहे कि मैं अपने आप को रिस्क में डाल रहा हूँ, अब मुझे माल लगाने की क्या जरूरत है, मैं अपनी जान तो हाजिर है मेरी, नहीं, जान भी चाहिए माल भी चाहिए, दोनों लगाओगे। और हम यहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि हर चीज फी सबीलिल्लाह नहीं हो जाती, हर चीज को नहीं हम कह सकते ये भी फी सबीलिल्लाह, ये भी सबीलिल्लाह, जो दीन की सरबुलंदी के लिए हो वही चीज फी सबीलिल्लाह होती, जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले काम है वही है फी सबीलिल्लाह। जैसे लोगों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाना, उनको अल्लाह का कलाम पहुंचाना, इसी तरह इस्लाम का दिफा करना, ये सब चीजें फी सबीलिल्लाह चीजें हैं। अब हम हर चीज को कह दें ये भी फी सबीलिल्लाह, ये भी ये नहीं है। तो अब ये कह दिया गया ना, अगर तुम्हारा दिल खुश नहीं भी है तब भी निकलो, यानी अगर दिल में तंगी भी है ना, बोझल है दिल कि हाय कैसे जाऊं, नहीं भी ये काम पसंद आ रहा तब भी करो, ठीक है। तो आशा अगर सामान की कसर हो तो तब भी, और किल्लत है तो तब भी। ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें पता हो ना, अगर तुम्हें इल्म हो तो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है। यानी आप जो दीन की कोई खिदमत का काम करते हैं ना, वो हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं, हम अपने अजर बढ़ा रहे होते हैं, हम अपनी बख्शिश का सामान कर रहे होते हैं, हम पता नहीं जन्नत में कितने दर्जे अपने बढ़ा रहे होते, कितना अल्लाह के कुर्ब का ये जरिया बन रहा होता, इसका अंदाजा करें और इसको सोचें। तो फिर है, अगर ये नहीं सोचते ना आप, बस हाय काम करना है, हाय काम मुसीबत आए, नहीं, आपको नहीं पता कि उसमें कितनी बेहतरी है आपके लिए। अगर आपको पता हो और अल्लाह की इस बात के ऊपर जब यकीन आपको हो ना कि इसमें बेहतरी है मेरे लिए, क्या है मुझे नहीं पता, यही यकीन होता है। कि मुझे नहीं भी समझ आ रही है, मुझे क्या, मुझे तो मुश्किल मिल रही। मिसाल के तौर पे अब उनको गर्मी है, सख्ती है, प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, चलना भी पैदल पड़ रहा है। अब इंसान कहता है क्या मुसीबत है, वो मुसीबत नहीं है, खैर है, तुम्हें पता ही नहीं है। लव क्या ना आरा करीब व सफर कासिदन लतवाऊ का, अगर होता ना ये सफर सामान करीब का। असल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर सामान नजर आ रहा होता और सफर भी दरमियाना सा होता, मीडियम सा होता, लतवाऊ का, वो आपकी पैरवी करते किसकी, नबी अलैहिस्सलाम की, कौन, मुनाफिकीन, उनकी बारे में बात हो रही है कि अगर आप कन्वीनियंस होती तो इन्होंने साथ चल पड़ना था। जी हाँ, यही मैं बात आपको उस वक्त समझा रही थी ना कि देखें जहां तक कन्वीनियंस होती थी ना वहां तक तो मुनाफिक भी कर लेते थे। हम कन्वीनियंसेस देख के काम करते हैं ना, उससे आगे हम नहीं जाते। मुझे मुझे कोई मुशक्कत ना उठानी पड़े, हाय जरा सा भी तिनका दौरा ना करना पड़े मुझे, बस मुझे जरा सी भी तकलीफ ना कहीं हो, है जरा सी गर्मी भी ना लग जाए, जरा सा भी मेरा टाइम ना लग जाए, जब बिल्कुल फारिग होंगी, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल सब कुछ, तब मैं चलूंगी। देखिए इस तरह की चीजें तो मुनाफिकीन भी करते थे, यहां तक तो वो भी पहुंच जाते थे, देखो उनको करना पड़ता था। मोमिन वो थे जो यहां से स्टार्ट करते थे जहां मुनाफिकीन एंड कर देते थे। खुद सोचे क्या था तबुक, खुद आप अपने जहन में लेकर आए। कोई आरामदेह सवारियां नहीं है, ऊंट है, और वो भी हर एक को नहीं मिला। 18 लोग एक ऊंट पे, तो कितने में एक की बारी आएगी या दो की बारी आएगी। फिर खाने को कुछ है नहीं उस सफर में, थका न लग गया, और गर्मी में ही हमारा हाल, हम हाथ झुमरे पे भी चले जाते हैं ना तो गर्मी से हम घबरा जाते हैं, हालांकि वो तो है ही सरासर एक इबादत का सफर, खाने को भी मिल रहा होता है, सवारियां भी होती हैं, लेकिन सिर्फ गर्मी हमें इतना परेशान कर देती कि हम, एक ही चीज हमारे लिए काफी होती है, यहाँ पे सारी चीजें मिल गई, और वो भी क्या, एक दो दिन के लिए। तो ये तो इतना लंबा जाना है और वहां पे लड़ना है, और ये अभी हमें पता होता है कि हमने हाथ से फलां दिन में हमने वापस चले जाना, फलां दिन में हमने होटल में पहुंच जाना, तब भी आप मीना वगैरह को याद करें, वहां के टेंट्स वगैरह कंफर्टेबल अगर ना हो, या बस में अगर एसी ना चल रहा हो, तो फिर क्या हाल होता। तो ये सफर ऐसा नहीं था कि तो चलो थक जाएंगे तो आराम से टेंटों में एसी वाले लगा के तो सो जाएंगे, नहीं, हम तो चलते ही तब हैं जब ये सारी सहूलतें हों। हमें तो खाना भी अच्छा मिलना चाहिए, बार बार कोई आके स्नैक भी दे, कोई ठंडे पानी की बोतलें भी तकसीम करे, कोई बावर्ची भी साथ होना चाहिए जो ताजा ताजा रोटियां बना के दे, और कम से कम एक गोश्त का सालन तो हो ना, तब हम चलते हैं, तब हम कोई काम करने के लिए राजी होते हैं, वो भी रोज एक ही मेन्यू ना हो। और यहाँ पे क्या है, खजूर मिल रही है एक, वो भी आधी हो गई, और उसके बाद फिर वो भी गुठली चूस रहे, और उसके बाद फिर पत्ते खा रहे हैं। मौसम अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो फिर भी हम हाय हाय मौसम की करते रहते हैं, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, सारा वक्त इस जुबान पे यही होगा। जब मौसम अच्छा होगा ना तब काम करेंगे, इतनी गर्मी में कौन करे। और फिर चलो तब हम काम करें जिस वक्त हमें फरागत हो, अभी तो आजकल हम बिजी ही बहुत हैं, पीक सीजन है हमारा चल रहा, या घर में कोई शादी है, या कोई और ऐसा काम है, बिजनेस में कोई सीजन आया हुआ है, हम क्यों अपना नुकसान उठाएं दीन के लिए। और सफर कौन सा 2-4 दिन का था, छोटा होता तो फिर भी हम चले जाते, इतने दिन का सफर ये कौन करे, छोड़ो। ये मैं इसलिए बातें बता रही हूं ताकि हम जरा सोचें कि क्या ऐसी बातें हम नहीं करते। अल्लाहु अकबर, वलाकिन बाउदत अलैहि मुशक्का, लेकिन दूर हो गई उन पर मसाफत, उनके पर बड़ी सख्त हो गई मसाफत। ये उन्होंने इसीलिए तो उन्होंने आके माजरतें देनी शुरू कर दी कि हमें एक्सक्यूज़ कर दें, हम नहीं जा सकते, वसा यहलिफू ना बिल्ला ही, और आके कसमें खा खा के कहने लगे अल्लाह की, लव इस्तताना ला खरजना माकुम, अगर हम इस्तताअत रखते ना हम भी जरूर निकलते आपके साथ, हमने तो जरूर चले जाना था कसम से हमने तो, लेकिन हमारे ये प्रॉब्लम है, हमारा ये है मसला हो गया, वो हो गया, हमारे घर में ऐसे हो गया, हमारे बच्चों को जरूरत है, हम कैसे करें। आजाब में भी तो ऐसे ही किया था, हमने कहा हमारे घर खुले हुए हम नहीं आ सकते, ऑल द टाइम उनके यही बस होती थी चीजें, यही परेशानियां होती थी, अपनी जात, अपना घर, अपने चीज, अपनी मफाद, इसीलिए तो उनको कहा कि दुनिया पे ही तुम रीझ गए और इसी के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि सारे यहीं के फायदे थे ना, तो उनके लिए ये बड़ी सख्त हो गई थी मसाफत, रास्ता उनके लिए तो और भी मुश्किल हो गया था कि हम ये कैसे करेंगे, और वो आके कसमें खाने लगे, वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह को पता है ये झूठे हैं, हम जरूर जाते आपके साथ, हमारा ये प्रॉब्लम ना ना होता तो हम जरूर करते, अल्लाह को पता ये है ही झूठ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बस इनके बहाने हैं ना करने के। लेकिन जब भी अल्लाह ताला के रास्ते के लिए इंसान कोई बहाने करता है ना, वो कुछ भी कहता है, मतलब मैं बिजी हूं, मैं ये हूं, मैं वो, आगे आप देखेंगे अल्लाह ताला ने, अच्छा वो आगे बात आएगी ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अफल्लाहु अनका, अल्लाह ताला ने फरमाया ए नबी अल्लाह आपको माफ करे, आगे अभी बात नहीं, पहले बात बताने से भी पहले अल्लाह आपको माफ करे, लिमा आजीन था, क्यों आपने उनको इजाजत दी, क्यों ऐसे लोगों को, ऐसे मुनाफिकीन को आपने क्यों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आ रहा था आप फरमा रहे थे अच्छा ठीक है ठीक है, वो पता ही था इन्होंने जाना तो है नहीं, इनके तो हमेशा से यही बहाने होते हैं, लिमाज़िन तलहम, आपने क्यों इजाजत दी, ये नहीं कि अल्लाह ताला को डांट रहे हैं या कुछ है, अल्लाह ताला को पता है इन्होंने नहीं जाना था, लेकिन आपकी इजाजत देने की वजह से क्या होता, अगर आप इजाजत ना देते तो क्या होता, हत्ता यतबैन लक अल्लज़ीना सदकू वतअलम अलकाज़िबीन, यहां तक जाहिर हो जाते वो लोग जिन्होंने सच कहा और आप जान लेते उनको जो झूठे, ये जाना तो इन्होंने फिर भी नहीं था, आप इजाजत ना भी देते तो इन्होंने फिर भी रुके रहना था, लेकिन आपकी इजाजत देने के बाद उनको ये मौका मिल गया, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हमें इजाजत मिल ही गई है इसलिए हम रह रहे हैं, वरना बाद में पता चल जाना था कौन आपके फिर भी हुक्म की नाफरमानी करता है और फिर भी रह जाता है पीछे, और आपको पता चल जाता है कौन मुनाफिक है, सबको एक्सपोज हो जाते हैं, ये बात थी, वरना ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी जिसकी वजह से वो रह गए, वरना तो उन्होंने चल ही पड़ना था, तो बड़ी ही मोहब्बत के साथ आपको कहा जा रहा है ए नबी अल्लाह आपको माफ करे, आपने नहीं देनी थी इनको इजाजत, ताकि पता तो चलता है इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है, उम्मीद है समझ आ रही होगी बात ना। अब ये सारा सिनेरियो हो रहा है ना जंग पे जाने से पहले का, ठीक है, कि मदीना में क्या हो रहा है, ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना यु'मिनूना बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम, नहीं इजाजत मांगेंगे आपसे वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखरत पर कि वो जिहाद करें अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ, यानी जो लोग इस्लाम के साथ वफादार हैं वो तो कभी आएंगे ही नहीं कि वो आगे कहें कि नहीं जी अभी हमें छुट्टी दे दें हम नहीं जा सकते, जिसका वाकई अल्लाह और आखरत पर ईमान है और वो उनसे वफादार है ना वो कभी आके ऐसी बात करेगा ही नहीं, वो इजाजत मांगेगा ही, उसको पता है मेरे दीन को इस वक्त मेरी जरूरत है, मैं कैसे पीछे रहूं, वो ये नहीं कहता लो मुझे ही करना है अब मैं ही रह गई करने को कोई और नहीं कर सकता, नहीं वो कभी नहीं आके ऐसे कहेंगे, वो कभी इजाजतें नहीं मांगेंगे, इसका मतलब है कि रुख्सतें वही मांगता है जिसका करने का इरादा ही ना हो, जो सिंसियर नहीं है ना, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मिसाल के तौर पे आपके बच्चे का कोई काम है बड़ा जरूरी काम है और आप कह दें कि नहीं मैं तो ना जा सकती हूँ ना कर सकती हूँ, मतलब बच्चे की शादी है या कोई उसका इम्तिहान है, तो आप कभी नहीं ये कहेंगे नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, नहीं मैं तो तुम्हारे साथ जा ही नहीं सकती तुम्हें छोड़ने के लिए, आप कहेंगे मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, मेरा बच्चा है, ऐसे कहेंगे ना। वो आपको कहेगा क्यों आप अपनी नींद तोड़ के जा रही हैं, आप उसको एयरपोर्ट क्यों छोड़ने जा रही हैं। आप कहते नहीं मेरा बच्चा है, मैं कैसे नहीं एयरपोर्ट जाऊं, मेरा बच्चा है मैं कैसे नहीं उसके इम्तिहान में उसको छोड़ने जाऊं, मेरी बच्ची है मैं कैसे नहीं उसकी शादी के लिए खड़ी हूं। लेकिन जब दीन का मामला आता है तो हम कहते कोई और ही कर ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो इस दीन के साथ सच्ची है ना वो तो मौके तलाश करते हैं, कौन सा मौका हमें मिल जाए। वो कभी ऐसे करेंगे कि दीन को जरूरत है, दीन के अब जब वो हमला करने आ रहे हैं ईमान वालों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो, और ये कहें हमने तो नहीं जाना, मारते काटते रहे। आज मुझे बताइए आज क्या आपके दीन को जरूरत है कि नहीं है। वो बहुत अच्छा चल रहा है, दीन को रूज है और पनप रहा है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और बताइए आज दीन को जरूरत है या जरूरत नहीं है, पहले तो हम ये देखें ना। आप मेरे ख्याल सभी इस चीज को मानते होंगे कि आज दीन को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है ना। तो जो आज का जिहाद है ना, मालों से और जानों से करने को कहा गया है, आज का जो जिहाद है ये मैदानों में नहीं हो रहा, कहीं दुनिया के अंदर कुफर और इस्लाम की कोई जंग नहीं लगी हुई इस वक्त, कि कोई जंग छिड़ी हुई है, एक तरफ कुफर और एक तरफ इस्लाम है और दोनों इसलिए लड़ रहे हैं कि इस्लाम वाले इसलिए लड़े कि इस्लाम का बोलबाला और कुफर वाले इस्लाम को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे कहीं पे भी नहीं हो रहा। इस वक्त डिफरेंट हालात हैं, या तो लोग रिसोर्सेस के लिए, वसाइल के लिए, हुकूमतें कायम करने के लिए तो कहीं ना कहीं जंगें हो रही हैं, मगर कुफर और इस्लाम की नहीं हो रही। तो आज की जंग फिर क्या है? आज की जंग मीडिया पे लड़ी जाती है, जहां पे इस्लाम पे हमले होते हैं, जहां पे इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा मुहिम जा रही है हर किस्म के मीडिया पे, और इसका शिकार हो के आज बहुत सारे लोग अपना ईमान गंवा चुके हैं। आज यहां पे इस्लाम का दिफा करना ये है जिहाद। जो इंसान दीन को सीखता है और फिर उस टेक्नोलॉजी को सीखता है जिस पे जाके वो उन लोगों को जवाब दे सके, और जवाब देने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि कोई खड़ा होके उनको वहां पे गालियां दे या उनको गालियां लिखे या अपने गुस्सा निकाले या उनको बुरा भला कहे, नहीं, उनको दलाइल के साथ मुंह तोड़ जवाब दे। जो इसके लिए तैयारी करता है वो अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद है, ये एक जिहाद है जिसकी आज इस दीन को जरूरत है, कि इसके जान निसार इस मैदान में सीना तान के खड़े हो, और जहां इस्लाम पर कोई बात करे तो गालियों से नहीं, सॉलिड बात से, दलील के साथ उसको जवाब दें, और ऐसे तमाम जो शर हैं उनका सर कुचल दें। तो कहाँ है वो लोग आज जो ऐसे लोगों को जवाब दें, जो हमारे नौजवानों को वरगला रहे हैं, जो इनका ईमान लूट रहे हैं, कहाँ है वो लोग जो उनका मुकाबला करें? ये भी तो इस्लाम पे हमला करने वाले हैं। आज इस्लाम के बेटे और बेटियां और इसके सिपाही कहाँ हैं? वो लोग जो अल्लाह रसूल के बारे में नाजेबा बातें करते हैं, उनको जवाब देने वाला कोई भी नहीं है क्या? वो क्यों नहीं नजर आते? इसलिए कि अक्सरियत तो खूब इल्म ही नहीं रखती, और जिनको थोड़ा बहुत इल्म है वो फिर कलील की दौड़ में लगे हुए, कलील की, उनकी रोजी रोटी की फिक्र और इसकी मसरूफियत, और रोजी रोटी नहीं मैं कहूंगी, ख्वाहिशात, ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है, जरूरत तो पूरी फकीर की भी हो जाती है लेकिन ख्वाहिशात पूरी बादशाहों की भी नहीं होती। ख्वाहिशात एक ऐसी दौड़ है कि जिसमें आप जितना आगे भागेंगे ये और लंबी होती जाएगी, कभी नहीं खत्म होंगी। तो ये लोग अपने ख्वाहिशात को पूरी करने के दौड़ में लगे हैं, जिसके पास वक्त है उसके पास टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है। तो लिहाजा कुफर की कुव्वतें तो अपना काम तेजी से कर रही हैं। इस्लाम के बेटे बेटियां कहाँ और किन चीजों में लगे हैं? वो तो ये एजेंडा लेके बैठे हुए हैं कि लोगों को इस्लाम से बदजन करें, उनका एजेंडा है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनका एजेंडा ये है कि हम इस्लाम का दिफा करें और इसका असल रूप लोगों के सामने लेकर आए जो असल है इस्लाम। वो तो लगे हुए कोशिशों में कि इस्लाम का चेहरा मसख करके दिखाएं और हम इसी पर पीटते रहते हैं, रोते रहते हैं, देखा हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा हो गया, फुला प्रोपोगंडा कर रहा है, देखो वो वही प्रोपोगंडा कर रहा। तो जवाब देने वाले कहाँ हैं? ऐसा थोड़ी है कि आप यतीम हैं, आपके पास भी तो जवाब है, आपके पास दलाइल हैं, लेकिन उनको कौन सीखे, उनको कौन समझे, उनको कौन पेश करे? तो क्या कोई ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की खूबसूरती लोगों के सामने लेकर आए? तो आज भी जिहाद है, लेकिन आज का जिहाद फर्क है। आज जिसको वो कहते हैं ना मीडिया वॉरफेयर, तो वाकई मीडिया वॉरफेयर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हजरत हसन शायरी करते थे ना, वो भी एक उस जमाने का एक मीडिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में दुआ की थी कि अल्लाह इनकी मदद रूहुल अमीन से कर। कितना अजीम काम था जिसको ये हजरत हसन को ये दुआ मिली। तो ऐसे लोग जो वाकई इस दीन के वफादार हैं, जिन्होंने अल्लाह और आखरत पर ईमान का सिर्फ मुंह से दावा नहीं किया हुआ, वो वाकई ईमान रखते हैं, वो तो कभी आके एक्सक्यूजेस नहीं मांगेंगे। वो तो कभी आके ये नहीं कहेंगे कि हमें रुख्सत दे दें, हम नहीं जा सकते, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारी चीजें, हमारी हम कैसे जाएं, हमारे आराम, हमारी तो बड़ी मजबूरियां हैं, हम क्या करें? कभी नहीं ऐसे करेंगे। ये मोमिन की शान ही नहीं है कि वो ऐसे कहे जब उसके दीन को जरूरत हो। वो ये बातें बनाने वाले सिर्फ मुनाफिक होते थे, जिनको जिस वक्त जरूरत होती थी तो वो बस आके इस तरह के बहाने करते थे। आगे पीछे तो ऐसे मर मिटने की बातें करते थे जैसे कि पता नहीं दीन के सबसे सच्चे यही हैं। तो वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला को बहुत अच्छी तरह पता है कि तकवा वाले कौन है, किसके अंदर क्या है, किसका ईमान कितना है, कौन अल्लाह से कितना डरने वाला है। इसका मतलब बोल बोल देने से वो सिर्फ ईमान नहीं हो जाता, कलमा पढ़ लेना सिर्फ आपके अंदर ईमान नहीं आ जाता जब तक आप ये प्रूव ना करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ईमान को शर्त बनाया है, युमिनूना बिल्लाही वल यौमिल आखिर। जिसने अल्लाह पर ईमान रखा और आखरत के दिन पर ईमान रखा, तो हो ही नहीं सकता उसके दीन को जरूरत हो। आप, वो बच्चा अकेला पड़ा हुआ है, रो रहा है, और आप कहेंगे नहीं नहीं जी मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं तो आज सोऊंगी, मैं तो 2 दिन से नहीं सोई। किसी का बच्चा अस्पताल में पड़ा हो, वो बैठी हुई घर में दावत कर रही है, ऐसे कभी हो सकता है बताएं? तो दीन को जरूरत हो, कैसे कभी हो सकता है? जिसने दीन को सीने से लगाया हो, जिसकी वफादारी दीन से हो, जो दीन को महबूब रखता है। ये जो हम इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं ना, ये करना बंद कर दें कि हम तो दीन की खातिर ये कर लें, हम तो दीन की खातिर, ये सिर्फ बातें रह जाती हैं, कुछ नहीं है ये। जब तक कि जब अमली मैदान के अंदर आते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया जैसे अल्लाह पर ईमान हो, आखरत के दिन पे ईमान हो ही नहीं सकता वो ऐसी बातें करे, हो ही नहीं सकता वो इजाजतें मांगे, वो ये कहे नहीं हम बिजी बहुत हैं, हमारे दीन को जरूरत है, होती फिर हम तो बहुत बिजी हैं। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता वो ये कहेंगे नहीं नहीं हमारी तो बड़ी मजबूरियां, हमारे पास तो टाइम नहीं, हमें तो ये, हमें तो वो। ये सारे बहाने इसलिए आते हैं कि हमारे लिए दीन महबूब नहीं है, जितना हम बोलते हैं ना वैसा नहीं है। हमारे लिए कोई और चीजें हैं जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, कोई और चीजें हैं जो दीन से ज्यादा हमें महबूब हैं, चाहे वो हमारे घर हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारी और कोई चीजें हैं, कोई भी चीज जो भी किसी के लिए है, लेकिन इसका मतलब वो दीन से ज्यादा महबूब है। जब भी हम ये कहें, अब कोई खड़ा हुआ किसी को कुरान की तरफ बुला रहा है, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला रहा है, अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहा है, वो अपनी तरफ थोड़ी बुला रहा है। वो अगर कुरान की तरफ बुलाता है और कोई आगे से बहाना नहीं हमें तो ये नहीं है, हमें तो वो, हमें तो हमारा तो ये मसला है, हम तो ऐसे वैसे। तो याद रखिए, वो जो भी रीजन देता है, इसका मतलब वो रीजन ज्यादा महबूब है इससे। हर इंसान पैसा भी वहीं लगाता है जहां पे के उसको कोई महबूब होता है। मतलब जैसे हम अपने बच्चों पे इतना खर्च करते हैं ना, कभी हम गिनते नहीं है, कभी हम उनसे बचा के नहीं रखते, बेदरेग उन पे खर्च करते हैं। जब दीन भी ऐसे महबूब हो जाएगा ना, तो इसके लिए भी खर्च करना मुश्किल नहीं लगेगा, जान लगानी भी मुश्किल नहीं लगेगी, चाहे थकें चाहे टूटें। इन्नमा यस्तअज़िनुकल्लज़ीन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इजाजतें वही मांगते हैं जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है, आखरत पर ईमान नहीं है, जिसको यकीन नहीं है कि एक दिन अल्लाह के आगे मुझे खड़े होना, जिसको ईमान ही नहीं है अल्लाह के ऊपर, वो जरूर इजाजतें मांगेंगे। यहां से तो उनको डिक्लेयर कर दिया गया ना कि ये मुनाफिक जो हैं, इनके अंदर ईमान नहीं है, ये ईमान वाले नहीं है। देखिए, मुनाफिक वो होता है जिसके अंदर कुफर होता है और वो बाहर से ईमान दिखा रहा होता है। अंदर कुफर ही है। काफिर का ये है कि वो अंदर से भी काफिर है, वो बाहर से भी काफिर दिखाता है। एक तीसरा भी होता है, उसको कहते हैं जिंदीक, जे नून दाल या कौफ। इसलिए आपको बता रही हूं, कभी अगर आप बुक्स में पढ़ें जिंदीक, तो आपको पता हो कि वो कौन होता है। जिंदीक वो होता है जो जिसके दिल में कुफर होता है और वो उस कुफर को ईमान बना के दिखाता है। एक है ना मुनाफिक, वो इसके अंदर कुफर है लेकिन वो ईमान दिखाता है। ये अपने कुफर को ईमान बना के दिखा रहा है, वो तो कुफर छुपा रहा है ना, जो कुफर को छुपाता है और दिखाता ही है कि मैं ईमान वाला हूं। ये तो कुफर है भी और कुफर को ही दिखा रहा है कि नहीं ये कुफर थोड़ी है, ये तो ईमान है। और इसकी आज की मिसाल ना कादियानी है, कुफर है अंदर और उसको दिखाते हैं कि ये ईमान है, कहते हैं हम मुसलमान है और ये है ईमान जिसको हम बता रहे हैं। तो ये तीन टर्म्स हैं, काफिर, मुनाफिक, जिंदियक। तो ये लोग तो जिसके अंदर ईमान ना हो, वही आके इजाजतें मांगता है, उसी को परवाह नहीं होती कि दीन के ऊपर कोई भी जरूरत है तो हम अपने आप को पेश करें। वरताबत कुलूबुम फहम फी रईबिहिम यतरद्ददून, और शक में पड़े हुए हैं इनके दिल, बस वो अपने शक में ही मुतरद्दिद हैं, उलट पुलट हो रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, आते जाते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं ना सूरह निसा में, मुज़बज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई ला इलाहा उलाई, कि वो कहीं के भी नहीं है वो असल में, ना इधर के ना उधर के। देखें, जो ऐसे इजाजतें मांग रहे हैं, जाहिर ही बात है ईमान तो इनके अंदर है नहीं। अब अंदर क्या है, शक है। अच्छा, ये जो शक होता है ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप आगे इंशाल्लाह सूरह हदीद में जिंदगी रही तो हम पढ़ेंगे कि क्या शक इंसान को कहाँ तक पहुंचा देता है, कि ये कंफ्यूजन सी जो अंदर होती है ना, पता नहीं क्या सही है और क्या सही नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कहीं मुसलमान ये कह रहे होते, हमें क्या पता, हम क्या जाने, हमें क्या पता ये सही भी है कि नहीं, हमें क्या पता ये। अच्छा, उनको बेचारों को यही नहीं समझ आ रही, हमें क्या पता वो, कोई लोग कहते हैं कब्र परस्ती ठीक है, कोई कहते हैं कब्र परस्ती ठीक नहीं है, तो पता नहीं क्या ठीक है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, फिर इस तरह बहुत सारी बातों में हमें क्या पता है पर्दे का वो है भी कि नहीं है, कोई मुझे तो नहीं पता, पता नहीं क्या कौन सही कहता है, कुछ लोग ये कहते हैं कुछ ये कहते हैं। कितनी दफा आप सुनते हैं ना ये बातें अपने मुसलमानों के जुबान से। हालांकि शक में रहना, कंफ्यूज रहना दीन की बातों में, ये कोई एक्सेप्टेबल बात नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज को वाजे कर दी है। फिर हम क्यों शक में रहते हैं? हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये है रास्ता और यही सही रास्ता है। ये नहीं कि पता नहीं क्या सही है, इसका मतलब दीन उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है, उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्या सही है और क्या गलत है। दे डोंट केयर, जो मर्जी सही होता रहे, जो मर्जी गलत हो, और हमने कौन सा करना है ना करना है ना, जैसे हमारा इससे ताल्लुक है। जिस चीज से आपका ताल्लुक हो, कभी आप ऐसे छोड़ सकते हैं कि हमें नहीं पता ठीक है कि नहीं? किसी औरत को ये देख तो देखे तो सही, उसकी रातों की नींद ना उड़ जाएगी किसी औरत को ये हो कि भाई उसके हस्बैंड ने पता नहीं एक और शादी कर ली है कि नहीं की, वो तो पागल हो जाएगी, कुछ ऐसे कभी थोड़ी कहेगी, मुझे क्या पता कर ली होगी शायद, अगर पता नहीं करी है कि नहीं करी, ऐसे नहीं कोई कहता। वो जब किसी के साथ ताल्लुक होता है ना तो फिर इंसान यकीन के साथ रहता है। अगर नहीं पता, देखिए इस ये इस दीने इस्लाम के ऊपर हमारा आखरत में फैसला होना कि हमने कहाँ जाना है, तो इसको हम ऐसे छोड़ दें, हमें पता ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं, इसमें तो मासूम बनने की बात नहीं है। ये नहीं पता है कुरान से जानो, नहीं पता है हदीस से जानो, नहीं पता है सीखो दीन को, खुद पता चल जाएगा, मगर जब दीन प्रायोरिटी ना हो तो फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं पता करने, क्योंकि हर चीज वाजे है, कोई ये नहीं कहे कि मुझे नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने हर चीज तुम्हें बता दी है, कोई चीज नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब करने वाली हो और जहन्नुम से दूर करने वाली हो, मगर मैंने उसको बता दिया, उसका हुक्म दे दिया, और मैंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो अल्लाह से दूर करने वाली हो और जहन्नुम से करीब कर देने वाली हो, मगर मैंने तुम्हें उससे मना कर दिया, यानी बुराई का भी बता दिया भलाई का भी बता दिया, दोनों रास्ते दिखा दिए, बता दिया ये गलत है ये सही है, फिर भी लोग कहते रहे हमें तो पता ही नहीं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, क्यों मुतरद्दिद है? ये मुनाफिकीन की निशानी है कि वो मुतरद्दिद रहता है, वो शक में रहता है। तो कभी शक में ना रहे अपने दीन के बारे में, जाने कॉन्फिडेंट रहें, जब आप शक में रहेंगे तो यकीन कैसे आएगा, शक तो यकीन का ऑपोजिट है। वलव अरादुल खुरूजा, और अगर वो इरादा करते निकलने का, लआद्दु लहू उद्दतन, तो कुछ तैयारी तो करते उसकी, अगर वाकई इनकी नीयत होती तो कुछ तो तैयारी होती, इनसे जरा पूछो कि तैयारी इन्होंने क्या की है, ये तैयारी जिस चीज का देखे ना, जिस चीज का इंसान ने इरादा किया हो, उसकी किसी के घर के अंदर मेहमान आए हैं, आ रहे हैं, तो उसको पता है कि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, उसको वो उसकी उठ की तैयारी करेगा, किसी का इरादा शादी करने का है वो उसकी तैयारी करता है, किसी का जॉब पे जाने का इरादा है वो उसकी तैयारी करता है, जिसका इरादा ही ना हो वो सोया पड़ा रहेगा, और वो कहे मुझे मेरा इरादा तो था कि मैंने जाना था, नहीं अगर आपका इरादा होता तो आप अलार्म भी लगाते, उठते भी, तैयार भी होते। तो इससे तैयारी से इंसान की पता चलता है कि उसका इरादा किसका है, इसी तरह हमारी तैयारी से पता चलेगा कि हमें आखरत का कितना यकीन है, हमें आखरत में जन्नत पाने का कितना शौक है। नहीं, शौक तो हमें बहुत है, शौक है तो फिर तैयारी कहाँ, अगर तैयारी नहीं है इसका मतलब आपने कोई उसका शौक नहीं है, कोई इरादा नहीं है उसका, शौक यहाँ की है, देखिए उसके लिए कितनी तैयारियां करते हैं, देखिए कितना अपने आप को खपाते हैं। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम, ये वाली बात थी जिसको मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं आगे जाके बताऊंगी कि लेकिन अल्लाह ने नापसंद कर लिया, कर दिया उनका उठना, अल्लाह ताला उनको अच्छा नहीं लगता उनका उठना, तो अल्लाह ने उनको बैठे ही रहने दिया, ये है अल्लाह ताला की सजा, जब इंसान इस तरह के काम करता है ना तो ये अल्लाह की सजा आती है, जब उसके अंदर खोट होता है ना, ये सजा, कोई इंसान सोचता है ना कि मैं मुझे क्या सजा मिली, मैंने तो ये काम किया, मुझे तो कोई सजा नहीं मिली, इंसान को सजाएं मिल रही होती हैं लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा होता, इंसान कहता है मैंने नमाज छोड़ी मुझे क्या सजा मिली, कोई भी नहीं, मेरे पर कौन सा आसमान टूट गया, मैंने झूठ बोला मेरे पर क्या हुआ, लेकिन उसको पता नहीं है कि अल्लाह से, अल्लाह ताला का अपने से दूर कर देना ये एक सजा ही तो है, कि अल्लाह उसे मुंह फेर ले ये सजा ही तो है, कि अल्लाह उसे नाराज हो जाए ये कितनी बड़ी सजा है, अगर समझे तो ये बहुत बड़ी सजा है। तो इसी तरह यहाँ पे जो कहा गया वो कह रहे हैं हाँ नहीं हमारा तो बड़ा प्लान था, अगर प्लान था तो तुम्हारी तैयारी कहाँ है, फिर अल्लाह वाला ने फरमा दिया असल में अल्लाह नहीं चाहता कि वो उठे, फसब्बतहुम, तो अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया, अल्लाह ने उनका उठना पसंद नहीं किया, कोई जो बहाना करता है ना कि मेरा फलां मसला है, मेरा मेरी उसको बुलाया जाए दीन की तरफ, वो कहते नहीं असल में हमारी ये, और ये वैसे तो हमने कर लेना था, हमने भी बड़े नेक हो जाना था, हमने भी बड़ा करना था, लेकिन मेरी ये चीज है, मेरा ये मसला है, मैंने भी मेरा भी बड़ा शौक है मस्जिद जाके नमाज पढ़ने का, या मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं फजर के लिए उठूँ, लेकिन बस नहीं होता। तो असल में बात ही है कि जो नेकी की तौफीक मिल जाना है ना, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने की, या इस रास्ते में कोई कुर्बानी देने की, या इस रास्ते के अंदर अपना कुछ लगाने की, या कोई कोई भी नेकी करने की, ये तौफीक अल्लाह देता है, और अल्लाह इसके लिए चुनता है किसी को तो उसको तौफीक देता है। वरना तो नेकी के बहुत सारे मौके आते और हमारे आगे से निकल जाते और हमें पता भी नहीं चलता। ओहो, बाद में ख्याल आता है हाँ ये नेकी कर लेती। तो ये जो जवाब भी होते हैं ना, जैसे वो कह रहे हैं हाँ नहीं, हमारा तो इरादा था चलने का, इसी तरह ये जो बात होती है ना कि नहीं, मेरा तो करने का इरादा था, तो उसका जवाब है ये कि अल्लाह ताला को तो तुम्हारा जाना पसंद ही नहीं, अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है कि तुम उसके आगे झुको, अल्लाह को पसंद ही नहीं है कि तुम उसके रास्ते में काम करो, अल्लाह को पसंद ही नहीं है कि तुम उसके लिए वक्त निकालो, अल्लाह को पसंद ही नहीं है कि तुम उसके कलाम के साथ जुड़ो। वो इंसानों के कोई खोट होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, अल्लाह खुद नहीं दूर करता। तो वो तो अपनी तरह से बड़े स्मार्ट बन रहे हैं ना कि मुनाफिक जो है कि हमें क्या जरूरत पड़ी हुई इतनी मुसीबत में जाने की, इतना टाइम वेस्ट करने की, कितना टाइम लगेगा, गर्मी में जाके वहां पे सड़ते रहेंगे, इतनी दूर जाएं हम तो। नहीं असल में हमने तो चाहा था, लेकिन बस क्या करें, मजबूरियां इतनी है ना। नहीं तुमने नहीं चाहा था, अगर तुमने चाहा था तो तुम तैयारी करते, और तुमने क्या चाहना था, अल्लाह ने ही नहीं चाहा कि तुम निकलो, क्योंकि अल्लाह को नहीं पसंद तुम्हारा निकलना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इस चीज से बचाए, या अल्लाह ताला अपने से दूर कर दे, या अपने रास्ते की तौफीक छीन ले। क्योंकि अल्लाह ताला तो फरमाता है ना, नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस तरफ कोई जाना चाहता है अल्लाह उसी तरफ उसको फेर देता है। तो अल्लाह जुल्म नहीं करता, इंसानों की अपनी कोई हरकतें होती हैं जिसकी वजह से अल्लाह तौफीक ही छीन लेता है, तौफीक ही नहीं मिलती फिर। इसीलिए फिर ये बहाने आते हैं ना, कहीं कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तो फिर कुछ बहाने आ जाते हैं, कोई एक्सक्यूजेज आते हैं, कोई ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं हुआ वो, क्योंकि अल्लाह नहीं चाह रहा कि तुम आओ। अल्लाह अकबर। और ये भी हमें पता चलता है ना कि अल्लाह ताला मौके देता है, मौके देता है, मगर जब इंसान हीले बहाने करता है, जान छुड़ाता फिरता है ना, तो अल्लाह तौफीक छीन लेता है। मसलन बाप कहता है ना कि ये काम कर दो, और बेटा बहाने करने लगता है, तो गैरतमंद बाप क्या कहेगा फिर कि अब मत करना, अब मुझे काम चाहिए ही नहीं तुमसे, अब उठना ही ना तुम, अब मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे काम की। तो ये जो कुरान की तरफ भी आपको बुलाया जाता है ना, तो जब इससे आप जान छुड़ाते हैं ना, नहीं मुझसे नहीं, ये नहीं वो नहीं, बाकी सारे काम दुनिया के हो रहे हैं, सिर्फ ये काम पता नहीं ऐसे लगता है कि जैसे सारा जिंदगी का टाइम इसी ने ले लेना, हाय हमारा टाइम ना कहीं इसके ऊपर चला जाए, आए हमारा कितना वक्त पता नहीं इस पे ही लग जाना है, कि पता नहीं हमें सारी चीजें ही हमारी रह जाएंगी, ना हम खा सकेंगे, ना पी सकेंगे, ना हम कहीं रह सकेंगे, ना कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि जो कुरान से जुड़े होते हैं वो भी खाते पीते हैं, वो भी दुनिया में रहते हैं, वो भी अपने सारे काम करते हैं, लेकिन जब अगर ये लगने लगे कि ये मेरा टाइम ले जाएगा सारा, और इसे जान छुड़ाए ना, तो फिर अल्लाह भी उठना पसंद नहीं करता उस बंदे का। हालांकि अगर वो ऐसे ना करे और अल्लाह के भरोसे पे कदम उठा ले, तो अल्लाह ताला फिर थाम लेता है, वो उस काम को आसान कर देता है, लेकिन जब इरादे ही नहीं होते ना, तो ये कलाम बड़ा गैरत वाला है, ये नहीं जाता उस दिल में जो इसको फेंकता फिरता है। वकील अकऊदू मअल काइदीन, और कहा गया बैठ जाओ बैठने वालों के साथ। किसने कहा था उनको? ये जुबाने हाल से कहना है, यानी वैसे नहीं, जुबाने काल से नहीं, किसी ने कहा उनको, बोला नहीं कि तुम बैठ जाओ, लेकिन ये एक जुबाने हाल है, यानी उनको एक उनका हालत के ठीक है, फिर तुम बैठे रहने वालों के साथ बैठे ही रहो, यानी जो बीमार हैं, औरतें बच्चे पीछे रह गए उनके साथ रहो तुम। तो नेकी की तौफीक छिन जाने से ना पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह मुझसे नेकी की तौफीक कभी ना छीनना। लव खराजू फीकुम मा ज़ादकुम इल्ला खबाला, अगर वो तुम्हारे साथ निकलते भी तो इनके निकलने का कोई फायदा नहीं होना था। पहले भी तो आप देखिए मुनाफिकीन जब निकले थे, आपको पता होगा कि एक दफा उन्होंने लड़ाई करवा दी थी अंसार और मुहाजरीन की, यही मुनाफिकीन ने कराई थी। इसी तरह जब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगी थी, वो भी तो सफर ही था जिसमें लड़ाई करवाई थी, दूसरा भी सफर ही था। इसी तरह एक दफा अब्दुल्ला बिन उबई ने कह दिया था हम जाएंगे मदीना तो हम क्या करेंगे, जाके जो इज्जत वाले हैं वो जलीलों को निकालेंगे वहां से, तो उसका मतलब क्या था? तो ये सारे पिछले सफरों में इन्होंने ऐसे ही किया। तो ये फसाद ही करते हैं, कभी मुसलमानों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, कभी कभी उनके अंदर अफवाहें फैलाते, कभी आपस में लड़ा देते, कभी कोई ऐसी बातें करते जिससे उनके हौसले, उनका मोरल डाउन हो जाए, कभी गिबतें इधर की उधर, उधर की उधर लगाते, लोगों में फूट डलवाते। तो ये तो इनका काम था। ये जैसे नहीं होते बाज खानदानों के अंदर कोई एक औरत होती वो इतनी फसादी होती है कि हर कोई उससे डरता है कि भाई ये अगर आ गई तो पता नहीं वो मसला ही क्रिएट करेगी, इसका आना भी कोई खैर का नहीं। अल्लाह माफ करे ऐसे किरदारों से, लेकिन ऐसे किरदार भी होते हैं, खानदानों में भी होते हैं। तो ये मुनाफिकीन इस किस्म का किरदार रखते थे, वला औदउ खिलालकुम, और खूब दौड़ाते फिरेंगे तुम्हारे अंदर, यानी अपने घोड़े घोड़े दौड़ाते, अपने सवारियां दौड़ाते फिरेंगे तो दरमियान तुम्हारे, यानी खूब दौड़ धूप करेंगे, तेजी दिखाएंगे इसके अंदर। सवारियां दौड़ाना, कोई घोड़ा दौड़ा लोगों के बीच बीच में, तो मतलब क्या है कि बड़ी सरगर्मी के साथ ये काम करेंगे कि फसाद डालें किसी तरह। ऐसे लोगों का फिर आप क्या कहते हैं कि खैर इसी में कि ये ना ही आए, आपने कोई दावत, कोई शादी, कोई इस तरह, तब आपका धुला तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अच्छा है कि ना ही आए, क्योंकि उन्होंने आके भी क्या करना है, बातें ही बनानी है और हमारी बुराइयां करनी है। तो फिर इसलिए ये किरदार मुनाफिक का होता है, सोचें। और अगर हम ये किरदार बन जाएं तो हम क्या होंगे फिर, कि किसी जगह पे भी गए तो वहां पे जाके बस किस तरह से इसको इसे तोड़ दें, इसको इसे कर लें, इसका में लड़ाई कराएं, इसको फसाद कराएं, इसकी चुगली इधर करें, उसको उधर करें, इनकी बुराइयां करें, इनसे चीजें लाके बाहर बताएं, फिर लोगों में इनको रुसवा करें, बदनाम करें, छोटी छोटी बातों को ढूंढें कि कहाँ से कोई बात निकला है कि जो मैं इनकी बाहर जाके करूं। ये सारा मुनाफिकों का किरदार है। यबगूनकुमुल फितना, वो तलाश करते हैं तुम में फितना, कोई ऐसी कोई चीज क्रिएट कर दे जिससे सारे इनका जो ये हंसी खुशी मोहब्बत के साथ जा रहे हैं तो इनके कुछ आपस के अंदर ताल्लुकात खराब ही करो। वफीकुम समाउन लहुम, और तुम में ही उनके सुनने वाले भी हैं। उनके सुनने वाले मतलब क्या, कमजोर भी तो ईमान वाले थे ना, कई मुसलमान जो थे उनके ईमान अभी इतने मजबूत नहीं थे, या जो नए नए मुसलमान हुए हैं अब वो क्या है, वो जब ये इनकी बातें सुनेंगे, क्योंकि बातें तो बड़ी खूबसूरत करते थे, तो वो भी उनमें आ जाते थे, इसलिए वो उनकी बातें गौर से सुनते हैं और वो एक फितने में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का तुम्हारे साथ ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि वो आपके अपने लोगों को भी खराब करेंगे। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को बड़ी अच्छी तरह जानने वाला है। जालिम कौन है यहाँ पे? वो लोग जो मुनाफिकीन थे। इसीलिए अब हर एक की बात सुनने के काबिल नहीं होती, कि जो भी कोई बात कर रहा होता है, यहां से ये पता चलता है ना कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फितना परदाज होते हैं, जो हर मिशन के अंदर, हर हर जगह में घुस के, चाहे वो खानदान है, चाहे वो इदारा है, चाहे वो कोई, अब उनका काम क्या होता है, यहाँ पे हम कोई फितना फैलाएं, यहाँ पे हम कोई शोशे छोड़े, अच्छा फिर चार लोग उनकी सुनने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो मत सुने ऐसे लोगों की बात। हर कोई सही बात नहीं कर रहा होता, वो उल्टी पट्टी पढ़ा देते उनको, वो भी डी ट्रैक हो जाते। नहीं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। देखो अभी मुनाफिकिन का यही तो काम था, अपनी मजलिस बना के बैठ जाते थे, फिर उसके बाद बुराइयां शुरू कर देते थे। फिर तो वो जो सुनते थे, अब वो कच्चे पक्के से तो लोग हैं। इसीलिए सिंसेरिटी जरूरी होती है ना, जिस मिशन के साथ, जिस काम के साथ, जिस दीन के साथ आप लगे, उसे सिंसियर रहें। कोई कुछ भी बोले वो असर नहीं करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे बैठ के कोई बोल रहा है, चाहे कहीं पे भी बोल रहा है। आप बस सुन ली बात, हाँ वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे थे कि वो उन्होंने शादी क्यों की हजरत आयशा से इतनी कम उम्र में। अब बजाय इसके कि हमारे पास इतना इल्म हो कि हम उनको जवाब दें, उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर खुद भी शकूक में पड़ जाते हैं। ये तो कमजोर मुसलमानों का तरीका था। क्या हमें इतना कमजोर होना चाहिए कि हम जो कोई बात करें हम बस वहीं पे फिसल जाएं? इसका मतलब क्या सिंसेरिटी है आपकी? कि अब डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें लेकर आते हैं और मुतासिर हो जाते हैं उन लोगों की बातों से, और उसके बाद अपना दीन ईमान भी जाता है। तो याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे लोग थे जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते थे, गलत बातें फैलाते थे, अफवाहें फैलाते थे, और उनका एजेंडा यही होता था, ये उनका मकसद होता था, और आज भी हैं। और कहीं पे भी आप जाएंगे, जो लोग इस तरह के होते हैं उनका हर जगह पे ये काम होता है, वो कहीं चैन से नहीं बैठते, उनसे देखा नहीं जाता लोग मिलके कैसे बैठे हुए, लोग ये कैसे आपस में प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए। कुछ है वो खानदान है तो उसको तोड़वा देंगे, कोई इदारा है तो उसमें फूट पड़वा देंगे, दीन इस्लाम है तो उसके मानने वालों के अंदर कुछ ऐसी शकूक व शुभात को डाउट्स ऐसे डाल देंगे। तो हमें भी इतनी कम से कम समझ होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों की बातों में ना आए ना, कि सबकी बातें सुनने बैठ जाएं। फिर हमें एक और भी सबक मिलता है कि देखें, जो मुखलिस लोग होते हैं ना, वो चाहे कम भी हों वो काफी होते हैं। जरूरी नहीं कि सारों को ही साथ शामिल करना, नहीं, चाहे मुनाफिकीन भी इनको भी साथ ले चलो। अब देखें कहने की तो बात ही ना, नहीं, ये भी अब नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया इनको ना लेके जाओ, इनका जाना आपके लिए खैर नहीं है, खैर के लोग चाहे साथ, वरना तो देखिए इनको भी ले जाए तो तादाद तो बढ़ेगी ना, अश्वा तो एक एक बंदे की जरूरत है। तो कुछ लोगों का पीछे रहना ही ठीक होता है, कुछ जरूरी नहीं होता कि हर एक को साथ ही लेकर चलेंगे तो फिर ही कोई कामयाबी होगी। नहीं, जो फसादी लोग हैं उनके फसाद से बचने के लिए बेहतर है कि उनका साथ ना लिया जाए। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई ओहद में वो पीछे रह गया था, अपना पूरा ग्रुप लेके वापस चला गया था, आता भी तो कोई खैर के काम ना करता। बड़ी चीजें हैं जो हम जिंदगी की सीखते हैं ना कुरान से, सुभान अल्लाह। आयतें चाहे किसी मैदाने जंग की हों, चाहे कहीं की भी हों, सुभान अल्लाह इतनी रहनुमाई मिलती है जिंदगी के हर फेज में। कैसे कुरान पाक हमारी, हम जैसे ऐसे लगता है कि किरदार को शेप अप कर रहा है। हम जैसे भी भद्दे जैसे भी थे, लेकिन ये हमारे मतलब संवार रहा है। लकद बतगव्वल फितना था मिन कबलू, इनका हाल तो ये है मुनाफिकों का कि इन्होंने इससे पहले भी फितने तलाश किए हैं। पहले भी कैसे फितने तलाश करते थे, तो देखें आप, जैसे मैंने आपको बताया ओवद में अब्दुल्ला बिन उबई ने ऐन मौके पे कैसे उसने साथ छोड़ दिया, और मैंने आपको और भी मिसालें दी हैं आयशा पे तोहमत लगाने में इसका कितना किरदार था, और साथ अपने और लोगों को भी मिला लिया था, कुछ सच्चे मुसलमान थे उनको भी मिला लिया था। तो मुसलमानों को याद दिलाया जा रहा है, तो भूल गए पहले इन्होंने क्या किया है। फिर इसी तरह आजाब में भी पीछे हो गए थे, इसी तरह जा जाके कैसे यहूदियों के साथ मिलते थे और उनके साथ कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, बस फिक्र ना करना। वकल्लबू लकल उमूर, और उलट पुलट किए तुम्हारे लिए सब मामलात। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तुम्हारे कामों को पहले भी बिगाड़ते रहे। हत्ता जाए अल हक वजहरा अमरुल्ला, हत्ता के आ गया हक बदर में, जब गलबा हो गया तो हक आ गया, सबने देख लिया। और वजहरा अमरुल्ला से क्या मतलब है, अल्लाह का अमर जाहिर हो गया, सबके सामने आ गया, वो फतह मक्का। वह हम कह रही हूं, और वो नापसंद करने वाले हैं, उनको तो आपकी कामयाबी बुरी लगती है, लेकिन अल्लाह ताला ने सब जाहिर कर दिया कि इस्लाम ही गालिब है। इनके पोल खुल गए, जजीरा अरब में मुसलमान गालिब आ गए, दीन गालिब आ गया। अमिनहुम मन यकूलु ज़न ली वला तफ्तिन्नी, इनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है मुझे इजाजत दे दे, मुझे फितने में ना डालें। और ये कौन था? जद बिन कईस था। जद बिन कईस ये वो मुनाफिक था जिसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो आप मुझे हमें वहां पे लेकर जाएंगे ना, तो वो तो रूमियों की औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो मुझे तो डर है कि मैं फितने पर पड़ जाऊंगा, इसलिए मुझे पीछे ही छोड़ दें। अल्लाह ताला ने फरमाया आला खबरदार, सुन लो, फिर फितना थी सका, तो ये तो पहले से फितने में पड़े हुए हैं, इन्होंने पढ़ना क्या है? ये कहते हैं हम फितने में पड़ जाए, ये तो पहले से फितने में है, और इनका फितना क्या है जिसमें ये पड़े हुए? मुनाफकत, कितना बड़ा फितना है जिसमें ये ऑलरेडी है। ये तो ऑलरेडी जहन्नुम का सामान बन चुके हैं। वह इन्ना जहन्नम लमुही तो तुम बिल काफिरीन, और बेशक जहन्नुम जो है वो घेरने वाली है काफिरों को। मुनाफिक नहीं कहा गया यहाँ, काफिरों को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिल में ये पूरे काफिर थे, तो ये फितने में तो ऑलरेडी पड़ चुके हैं। जब ये नेकी के काम से पीछे रह रहे हैं, जिहाद से पीछे रह रहे हैं जो फर्ज आईन है, और फिर ये निफाक में इतने आगे निकल गए हैं, कैसे कैसे कस्में खा खा के कैसे बहाने कर रहे हैं, अल्लाह की कस्में खा रहे हैं, झूठी कस्में, और सोचते हैं कि हम अभी फितने में नहीं पड़े, और क्या फितने में पड़ना। यहाँ पे नाम नहीं लिया गया, मगर उसने ऐसा बहाना किया था, और इसी तरह कोई भी ऐसे बहाने करता है तो वो भी इसमें शामिल है। इन तुसिब का हसना तो उन तसु हूं, अगर आपको पहुंचती है कोई भलाई तो इनको बुरी लगती है। ये बात पहले किसके लिए आई थी? काफरों के लिए। अब मुनाफिकीन के बारे में आ रही है कि उनके से आपकी जो कोई भलाई है, यानी जैसे मुसलमानों को फतह मिल गई, माल गनीमत मिल गया, कामयाबियां मिल रही हैं, और वो ऊपर जा रहे हैं, और ज्यादा उनका यानी अरब के अंदर होल्ड हो रहा है, तो ये तो उनको बहुत बुरा लगता था, उनके दिलों की हालत बुरी हो जाती थी। और ये दुश्मन का ही काम होता है कि जब किसी को कोई खुशी मिले तो उसको बुरी लगती है। इन तो सिर्फ का मुसीबत यकूलु कद अखदना अमरना मिन कब्ल, जब कोई मुसीबत तुम्हें पहुंचती है तो आगे से बड़े खुश होते हैं कि शुक्र है इनको मुसीबत पहुंची, आगे से कहते हैं क्या है कि हमने तो अपना मामला पहले ही सही कर लिया था, यानी इसीलिए तो हम साथ नहीं गए, पता था हमें कि इनको ये मसले होने, पता था हमें कि ये मरूमियों से कौन मुकाबला कर सकता है, इतनी बड़ी ताकत से। देखिए ना, अब एक सुपर पावर के साथ मुकाबला होने जा रहा था, पहले तो अरब में ही होता था, ज्यादा से ज्यादा यहूदियों के साथ हो गया था खैबर में, रूम जैसी ताकत के साथ तो नहीं हुआ था, तो हमने तो अपना देखो पहले ही कर लिया, हम तो इसीलिए साथ ही नहीं गए, हमने तो पहले ही सोच लिया था। नहीं, यानी हम कितने स्मार्ट है ना, जो खुशी मनाते हुए कहते हैं देखा पहले ही हमने तो अपना इंतजाम किया हुआ था, इसीलिए किया था। वह तवल्लव हम फरीहून, और वो मुंह मोड़ जाते हैं इस हाल में कि वो खुश होते हैं, अंदर ही अंदर खुश हो रहते हैं कि अच्छा हुआ इनके साथ यही होना चाहिए था, मतलब कहीं शिकस्त हो गई है, नुकसान हो गया है, शहीद हो गए लोग, तो इनको बड़ा इस पे खुशी होती थी। अस्तग़फिरुल्लाह, जैसे हुदैबिया में मुसलमान निकले थे ना, तो ये बड़े खुश थे कि अच्छा है जाएंगे तो वहां पे जाएंगे तो इनका मुकाबला होगा, और फिर देखना क्या होता गया इनके साथ, और हथियार भी नहीं लेके गए हुए, तो अब इन्होंने बच के कहाँ जा आना है वापस, इसलिए साथ भी नहीं गए थे। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना, अल्लाह अकबर, इतना प्यारा अल्लाह ताला ने जवाब बताया ना, ऐसे तमाम लोगों को एक ढारस दे दी है जो ईमान पे होते हैं, और उनको सताने वाले कैसे, देखो किस तरह से, बस दफा हम बड़े परेशान होते हैं ना कि देखो हमें कोई मुसीबत पहुंचती है तो जो भी हमारा दुश्मन या कुछ कोई होता है कि इसको बड़ी खुशी होती है, और हमें कोई खुशी मिल जाए तो उसको जलन शुरू हो जाती है, जलसी होती है इतनी है, इनको क्यों कोई अच्छे कोई अच्छाई मिल गई। तो आगे से क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ में फिर बहुत इंसान रहता है कि क्यों, ऐसा क्यों है। मैं मुसीबत में हो रही है, खुश हो रहा है, तो उस वक्त बजाय उनसे दुश्मनी लेके और उनके साथ कुछ और उल्टे सीधे काम करें और खुद भी गुनाहगार हो और फिर उनकी बुराइयां भी करें, लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना, हरगिज नहीं हमको पहुंचेगी मगर वो जो लिख दिया अल्लाह ने। अगर हमारे पर कोई मुसीबत भी आ रही तो वही आ रही है जो अल्लाह ने पहले से हमारी तकदीर में लिख दिया। हुआ मौला ना, वो हमारा मौला है, वो हमारे लिए बुरा थोड़ी चाहेगा। वो जो भी मेरे लिए मुसीबत भी आई इसमें भी मेरी कोई भलाई होनी है। तो ये उनको जवाब है, कुल उनको कह दें ए नबी, सुभान अल्लाह, तुम्हारे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया वो ही हमारे लिए होना है। और अगर खुश होता है कोई मुसीबत के ऊपर, हमारी मुसीबत पे कोई खुश होता है, तो मुसीबत तो अल्लाह ने लिख दी थी ना, और वो हमारा मौला है, हमारा कारसाज है। वअलल्लाह ही फल या तवक्कल मुमिनून, और अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं ईमान वाले। तो किसी भी मुसीबत पे भी इंसान, चाहे कोई खुश इस पे हो रहा है या नहीं, लेकिन किसी भी मुसीबत पे इंसान अगर ये बात जहन में रखे ना, तो उसके दिल को ढारस मिल जाती। और कोई भी ये कहे कि हाँ देखा, ये ना करते ना, मेरी बात मानते तो ऐसा होता, वो ना करते तो ऐसा होता, तो उसका भी जवाब यही है कि हमें तो वो ही पहुंचेगा ना जो अल्लाह ने लिख दिया हमारी तकदीर में। तो कोई बात नहीं, वो हमारा मौला है, हमारे साथ जो भी करेगा वो हमारे लिए भला ही होगा, वो भला हमारे लिए कोई बुरा चाहेगा। कुल कह दीजिए और उनसे कह दें, हल तरब सुन बिना, क्या तुम इंतजार करते हो हमारे बारे में किस चीज का, इल्ला एहदल हुस्ना, यही नहीं तुम इंतजार करते, आगे इल्ला आ रहा है तो हल का हम तर्जुमा क्या नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे, नहीं तुम इंतजार करते हमारे बारे में मगर दो में से एक भलाई का। वो तो खैर उसको भलाई नहीं समझते थे, लेकिन मोमिन के लिए भलाई है। अब ये कहा जा रहा है कि आप इन मुनाफिकिन को कहें जो कि इंतजार में बैठे होते थे कि देखते हैं हम इनका होता क्या है। अब उनको तो है ना कि अब जा रहे हैं, या कोई भी जंग होती या कोई ऐसा मार्का होता तो उनकी क्या होती थी, अब जा रहे हैं अब क्या होगा, या तो फतह हो जाएगी या फिर क्या होगा, मारे जाएंगे, नुकसान होगा, इनको ये होगा। तो दोनों चीजों को क्या कहा, हुस्ना यहीं, तुम हमारे बारे में दो में से एक का इंतजार करते हो, तो जिसको तुम मुसीबत कह रहे हो, नुकसान कह रहे हो, वो तो हमारे लिए दो भलाइयों में से एक भलाई है, हुस्ना है वो हमारे लिए। जब मोमिन अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो सोचें वो गाजी हो या शहीद हो, दोनों में उसके लिए तो भलाई ही भलाई है, और उसको क्या चाहिए। तुम्हारे लिए ये मुसीबत है कि हाय जान चली गई, लेकिन हमारे लिए तो ये भलाई है, हमें तो अल्लाह से दोनों सूरतों में रिवॉर्ड मिलना है। सोचे एक इंसान अल्लाह के रास्ते में जो निकलता है ना, वो कभी भी नुकसान नहीं उठाता, वो नफा ही नफा का सौदा है। मसलन आप अल्लाह के रास्ते में निकले, आपने मिसाल के तौर पे कोई बूथ लगाया, आप सारा दिन उस पे खड़ी रही, मगर कोई भी आया ही नहीं, किसी ने रजिस्टर नहीं किया, तो अब आप कहते हैं हाँ मेरा तो टाइम जाया ही हुआ। नहीं, वो जाया नहीं है, आपका अजर अल्लाह के यहाँ महफूज हो गया, वो कोई आया या नहीं आया इस पे डिपेंड नहीं करता। मोमिन को शिकस्त हो या उसको फतह हो, शिकस्त हो गई तो लड़ते लड़ते जान दे देगा, फतह हो गई तो तब भी वो गाजी बन के आएगा, तो हर तरह से उसके लिए तो फायदा है। तो आपकी मेहनत की वजह से कोई आ जाता है तब भी आप फायदे में, अगर कोई नहीं आता, कोई भी कबूल नहीं करता, तब भी आपका कोई नुकसान नहीं, आपका तब भी फायदा ही है। ठीक है, तो इस बात को समझना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते की कोई मेहनत जाया नहीं होती, वो रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। इकबाल ने कहा था ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर कोई नुकसान भी हो जाता है ना, तो घबराना नहीं है, उससे भी आपकी उड़ान और ऊंची होगी, उससे भी और सीखते हैं, ये सोचते हैं, ये खुश होते हैं कि अच्छा अच्छा हुआ ना इनके साथ ये हुआ, देखा ना देखा, कहा था ना हमने ना निकलो, हम तो पहले ही समझ गए थे, इनको कहने दो, इनको पता ही नहीं है कि इसका रिवॉर्ड क्या है। वह नहनु न तरबसु बिकुम, और हम भी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, किस चीज का, अन युसीबकुमुल्लाह, कि पहुंचाए तुमको अल्लाह, बी अजाब मिन इंदी और बी इन बी अईदीना, कि हमारे हाथ से कोई अजाब पहुंचा दे या अपने पास से पहुंचा दे, हम भी तुम्हारे बारे में इंतजार में ही हैं। और तुम्हारे लिए क्या इंतजार है, हमारे लिए तो हुस्ना यही ने, और तुम्हारे लिए हम क्या इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो अजाब है, यानी या तो अल्लाह ताला अपने पास ही कोई मुसीबत ऐसी नाजिल कर दे, कोई अजाब ले आए, कोई वबा आ जाए, या हमारे हाथों से जंग में तुम खत्म कर दिए जाओ, पता रब्बा सू, बस इंतजार करो, इन्ना माँ को मुतरबी सू, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाले हैं। जबरदस्त जवाब, जबरदस्त बात, बजाय इंसान कुड़ता रहे, जलता रहे, हाय हाय वो हमारे खिलाफ हैं, देखो वो कितने खुश हो रहे हैं, देखो हमारी मुसीबत के ऊपर उनको कितना मजा आ रहा है, वो तो पार्टी टाइम कर रहे हैं, और हमें शिकस्त हो गई है, नहीं, युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, ये है जवाब इसका। और अल्लाह के रास्ते में कोई नुकसान पहुंचा है तो वो नुकसान थोड़ी है, वो तो हुस्ना यही ने, एहदल हुस्ना यही ने, दो भलाइयां थी उनमें से एक भलाई है वो, तो भलाई भलाई है इस रास्ते में, टू बेस्ट थिंग में से कोई एक तो मिलेगी मुझे, तो इस रास्ते में भी कोई मुसीबत नहीं, तुम्हें मुसीबत लगती, हमें नहीं लगती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें कबूल करे अपने रास्ते में, और अपने दीन की बेहतरीन खिदमतें हम सबसे ले ले, हमें इखलास नियत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون